الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. جی، تو اس کلاس کے اندر ہم امور خانداری میں حسن انتظام، جو ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ ان کی کتاب ہے، جو ان کے سلسلہ دروس کے اوپر ہی مبنی ہے، تو اس میں سے انتظام خانہ یعنی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا ٹاپک پڑھ رہے تھے. تو یہ تقریباً اپنے اختتام کے اوپر ہے، جو آخری عنوان ہم نے اس میں پڑھنا شروع کر دیا تھا پچھلی کلاس میں، وہ تھا امور خانہ میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا کردار، یعنی امور خانہ میں صحابیات کا کردار. تو صحابیات کون تھیں جو نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ٹھیک ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی جگہ پہ موجود تھیں جہاں پہ نبی علیہ السلام موجود ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو صحابیات کہا جاتا ہے. تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت دی ہے. ہمارے مشائخ کے یہاں یہ فقرہ بہت مشہور ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت جس کو ملے گی اس کو خدا نہیں ملے گا، یا اس کو خدا ملے گا اس کو جنت نہیں ملے گی، یہ دو الگ الگ معاملات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فقرہ جو ہے وہ خدمت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی کو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جنت عبادت کرنے سے تو جنت مل جائے گی، لیکن خدمت کرنے سے جو ہے نا وہ خدا ملے گا، مطلب خدا کی ایک خصوصی رضا ملے گی، خصوصی معیت ملے گی. عبادت کرنے سے بھی وہی ملتی ہے، لیکن اگر عبادت اس نوعیت کی ہو یہ جس میں کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ صرف اعمال کے اوپر ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کا زیادہ دھیان نہ ہو، تو پھر ایسی عبادت کے اوپر جو ثواب ہے ملتا تو ہے لیکن کم ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثواب کی بھی تو پھر کوالٹیز ہوتی ہیں نا کہ کتنا ثواب مل رہا ہے، کسی کو 7 گنا ثواب ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ثواب ملتا ہے، تو ان میں فرق ہے نا. تو اللہ کی محبت کے ساتھ کوئی عبادت کی جائے گی جس کے اوپر زیادہ ثواب ملے گا. یہی معاملہ خدمت کا بھی ہے، یہ خدمت جو ہے یہ بھی عبادت ہی کی ایک شکل ہے، اور چونکہ یہ اللہ کے بندوں کی تکلیف میں ان کے کام آنا، اللہ کے بندوں کی فکر کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو خدمت کے ذریعے سے جنت دی ہے، یہ بھی بھائی سیم ہی کانسیپٹ ہے، الگ الگ باتیں نہیں ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خاتون جنت تھیں، وہ سارا دن اپنے گھر کے کام میں مصروف رہتی تھیں، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی تھیں اور برتن دھوتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، یعنی محنت کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں سخت گٹے بن گئے تھے، گٹے سے مراد جو ہے وہ اسکن ہارڈ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا، یعنی آبلے، بہت چھوٹے چھوٹے آبلے جو ہے نا وہ ہاتھ کے اوپر جو پڑ جاتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے گڈھے پڑ جانا. सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं और नबी अलैहिस्सलाम की लाडली थी, यानी जो है सबसे कमसिन साहबिया थी, उम्मुल मोमिनीन थी, और हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। तो बहुत सारी नस्बतों की वजह से ये नबी अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा चहेती बीवी कहलाती हैं। मगर वो अपने घर में चक्की खुद पीसती थी और गंदम का आटा खुद बनाती थी। तो ये चहीता होना या मोहब्बत का मरकूज होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि अब जो है ना वो आप कामकाज नहीं करेंगे, बल्कि कामकाज की वजह से ही मोहब्बत भी ज्यादा मिलती है। सिर्फ लाड़ नखरे और ऐंठन दिखाना या जो है वो बड़ी बड़ी बातें करना, तो इससे तो वैसे भी मोहब्बत नहीं मिलती, इससे तो वैसे ही जो है वो इंसान तंग आ जाता है। ठीक है, लाड़ नखरे और बड़ी बड़ी बातें बनाना, इससे मोहब्बत नहीं मिलती, इससे जो है वो अगला बंदा तंग आ जाता है और आपसे जो है वो दिल में नफरत करना शुरू कर देता है। मोहब्बत तो मिलती है जब किसी की खैर ख्वाही की जाए, जब किसी के लिए फायदे का सबब बना जाए, जब किसी की खिदमत की जाए, तो ये दूसरे इंसान के दिल में इंसान के लिए मोहब्बत के जज्बात को पैदा करती है। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा के बारे में भी हमने पिछली क्लास में बल्कि पढ़ लिया था। अगली बात हजरत सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये भी उम्मुल मोमिनीन है। ठीक है, 11 उम्महातुल मोमिनीन थी टोटल, सब कुछ सबको मिला करके, तो उनमें से एक हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। ये वो फूफी नहीं है नबी अलैहिस्सलाम की, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की सगी फूफी जो कि मुसलमान हो गई थी, 6 फूफियों में से एक मुसलमान होना कंफर्म है, दूसरी जो है वो आतिका, उनका कहीं लिखा है कि मुसलमान हुई, लेकिन ज्यादातर सीरत नगारों ने लिखा है कि उनका कुछ कंफर्म नहीं है कि मुसलमान हुई थी या नहीं मुसलमान हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम की मिसाल को देख करके और इससे ज्यादा हमें क्या बात समझने के लिए काफी होनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के जो सबसे करीबी रिश्तेदार थे, ठीक है, खुसूसन जो उम्र में बड़े थे, ठीक है, जैसे फुपियाँ हैं और जो है चचा हैं और ताया हैं, तो इनमें से जो है वो मुसलमान होने वालों की तादाद बहुत ही कम। तो सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हुई और इनके भाई हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, और इन्हीं के दूसरे सगे भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने मुसलमान, लेकिन और कोई चाचा जो थे वो मुसलमान नहीं हुए, हत्ता के अबू तालिब, जिन्होंने इतनी नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया और मोहब्बत करी, लेकिन वो भी मुसलमान नहीं हुए। तो ये हमारे लिए भी समझने की बात है कि भाई बड़ों के लिए दुआएं तो करनी है और बड़ों को अगर मौका मिले तो बात समझाने की कोशिश भी करनी है, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानते ना, तो फिर कोई बहुत यानी फ्रस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है और जो है ना उसके ऊपर मायूस होने की जरूरत नहीं है और दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अगर बड़े आपकी बात नहीं मान रहे, दीन की बात आप उनके सामने रखते हैं, उनको अच्छे से बात समझाते हैं, दलाइल भी उन तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वो बात मान के नहीं दे रहे। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को हमें देख लेना चाहिए कि भाई आपसे असलम के जो चचा और फुफियाँ थी, उन्होंने कौन सी आपसे असलम की बात मानी थी। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला के ने अपने हाथ में हिदायत रखी है, जिसको दिल में डालेंगे अल्लाह ताला वो हिदायत पा लेगा। हमारा काम जो है वो खुद अपनी फिक्र करना है और बात को अगले बंदे तक अच्छे अंदाज में पहुंचाना है। तो ये जो सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, ये तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी। तमाम उम्महात में बेस्ट कुकिंग, बेहतरीन पकाई उनकी थी। ठीक है, उनके पके हुए खाने बहुत खुश जायका होते थे और नबी अलैहिस्सलाम भी खाकर खुशी का इजहार फरमाते थे। ठीक है, तो जाहिर है हजरत ने ये बात लिखी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हदीस से इसकी दलील मिलती होगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके खाने के ऊपर खुशी का इजहार फरमाया, तो वहीं से बस ये बात समझ में आ गई कि इनकी कुकिंग अच्छी होती थी। ठीक है, तो मकसद यहाँ पे बयान करने का क्या है कि महा जो है ना वो खाने पकाने में भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालती थी, अच्छा अच्छा खाना पकाना, गरम खाना जो है वो आप सरसरम के लिए पेश करना वगैरह। तो कुकिंग जो होती है ये एक बहुत ही यानी घर के अंदर जो है ना, बल्कि आजकल तो ये पता नहीं, एक रिसेंटली एक पोस्ट भी जो है वो चल रही थी, किसी ने मुझे भी भेजी, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ सका उसको, लेकिन इट वाज समथिंग अबाउट कुकिंग कि अमेरिकन लाइफ के अंदर जो है ना ये होम कुक मील जो था वो कितनी अहमियत का हामिल था, और ये होम कुक मील जो है वो जैसे जैसे खत्म हुआ और बाहर से खाने आने शुरू हुए और जो है वो फास्ट फूड कल्चर जब से आना शुरू हुआ और ये सारी चीजें, तो उस वक्त से जो है ना वो अमेरिकन फैमिली जो है वो बिल्कुल ब्रेक होकर के रह गई, और ये पूरा निजाम जो है ना वो अमेरिका का खराब हो गया। अब वो अमेरिका का रोना रो रहे हैं, ठीक है, तो किस बुनियाद पे रो रहे हैं कि जी घर का खाना जो था ना ये गोया के सबको जोड़ने वाली चीज थी, और हम भी अपने मशायख से यही सुनते हैं कि घर के अंदर जो बैठ के सारी फैमिली खाना खाती है ना तो उस वो बड़ा अहम तरीन वक्त होता है घर का फैमिली के लिए, जिसमें के सब बैठ करके साथ खाना खाएं पर्दे का लिहाज करते हुए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है सब बैठ के खाएं का मतलब ये है कि बेपर्दगी हो रही है, महरम गैर महरम सारे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं ताकि मोहब्बत पैदा होगी, एब्सोल्युटली नॉट। अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ करके कोई मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, बल्कि नफरतें पैदा होती हैं, ठीक है, इतना तो हमें ईमान ला ले आना चाहिए ना नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर, ठीक है, कि आपके दीन को तोड़ करके मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, कई दफा बात हो चुकी है उसके ऊपर, लेकिन जो महरम रिश्तेदार हैं, जो मियाँ बीवी और सगी औलाद है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं बैठ के साथ खा रहे, ठीक है, उसको साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, एक बहुत अहम वक्त होता है, तो खाना पकाना, खाना साथ मिलके खाना, ये घर के अंदर एक बुनियादी चीज होती है। फिर उसके बाद अगली सहाबिया का जिक्र है, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन की बड़ी साहिबा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा छोटी साहिबजादी थी, और सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा जो है वो बड़ी बेटी थी, तो उनके भी बहुत सारे वाकयात किताबों में लिखे हैं। वो घर के सारे काम करती थी और उनके खाविंद ने, यानी जो जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये नबी अलैहिस्सलाम की फूफी सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे, ठीक है, तो बच्चों की क्लास में भी जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हा के ही वाकया पिछले हफ्ते तक चल रहा था। तो इनके खाविंद जुबैर रजी अल्लाह अन्हा ने कुछ जानवर और ऊंट वगैरह पाले हुए थे, इन जानवरों को भी चारा वही डालती थी, और कई मरतबा खाने की और कोई चीज ना होती तो खजूर की गुठलियों को पीस कर उन जानवरों को खिलाया करते, ठीक है, जैसे आज भी हमारे भी गांव देहात वगैरह के अंदर यही सिलसिला होता है कि मर्द बाहर काम के लिए चला जाता है, खेतों में चला जाता है, और जो मवेशी वगैरह घर में रह जाते हैं तो उनके खाने पीने का सारा इंतजाम जो है वो करके औरत क्या करती है, ठीक है। अब तो शहरों वगैरह के अंदर तो घर भी ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे कि अब मवेशियों की कोई जगह ही नहीं होती, तो जाहिर है फिर वो सिलसिला शहरों में तो खत्म ही हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा मुर्गी वो दाना डालना ही अगर नसीब हो जाए किसी औरत को तो बड़ी बात है, वरना तो नेचर तो अब जिंदगी से खत्म ही हो चुकी, अब सब कुछ आर्टिफिशियल ही है। तो बहरहाल, तो अगर इस किस्म का भी मौका मिले तो इसमें भी शर्म और तंगी महसूस नहीं करनी चाहिए, कभी घर के जानवरों को भी चारा डालना। तो खजूर की गुठलियों के बारे में हजरत ने एक और भी बात लिखी कि, या फरमाई जब बयान कर रहे थे कि हमें तो ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही कि खजूर की गुठलियों को पीसना इतना मुश्किल काम है कि कोई हद नहीं, तो वो औरत होकर कैसे उनको भून लेती थी और जानवरों को खिलाती थी, ठीक है, तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड आप में से शायद किसी को पता भी हो कि हजरत जी को भी ये मामला पेश आया था, मुझे खुद भी याद नहीं है कि उनका पुराना बयान हो गया तलबीना के मौजूद का जो बयान था, तो उसके अंदर जो है ना ये वाली बात हजरत ने बताई थी कि अजवा खजूर में जो है ना वो हार्ट के मरीज, हार्ट के मर्ज की शिफा, ये हदीस से पता चली, अजवा खजूर, ठीक है, तो अब अजवा खजूर को जब देखा गया पता चला कि भाई जो खजूर का सॉफ्ट पार्ट होता है तो उसके अंदर तो सिर्फ फ्रक्टोज होता है, सिर्फ बेसिकली शुगर की, फूड शुगर होती है उसके अंदर, तो उसका जो है वो क्या ताल्लुक हो सकता है हार्ट डिजीज के साथ, तो फिर पता चला कि इसकी खुटलियों के अंदर जो है ना जो मादा होता है, मवाद होता है, वो जो है वो दिल की बीमारी से मुताल्लिक होता है, तो अब उसको दवा कैसे बनाई जाए, गुठलियां कोई ऐसे तो नहीं निकल सकता, तो फिर इस नतीजे पहुंचे कि इन गुठलियों को पीसना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी तहकीक चलती रही हत्ता कि घुटनियों को पीसने तक बात आई, तो जब घुटनियों को पीसने की कोशिश शुरू करी तो वो पिसती नहीं थी, किसी भी प्रेस के अंदर डाले तो वो दूसरी तरफ से निकल जाए, और वो पिस के नहीं देती थी, हत्ता के जो है वो सारी चीजें नाकाम हो गई, सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तो फिर ये चीज बस अल्लाह ने दिल में डाली कि इन घुटनियों को जो है वो जमीन में डाला जाए, और जमीन में जब ये घुटनियां कुछ अरसे के बाद जब इनके अंदर से यानी पौधा निकलने की सलाहियत पैदा होगी ना, तो उस वक्त ये घुटनी जो होती है वो नरम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से कूपल फूटनी होती है, तो अब वो नरम हो जाती है। तो जब वो नरम हो जाए ना, उस वक्त उसको कूटा जाए, ठीक है। तो बहरहाल इसका कोई ना कोई बिलाखिर कुछ ना कुछ हल निकाला था। तो फिर खजूर की अजवा खजूर की गुठलियां पिसनी शुरू हो गई, और फिर बिलाखिर ये मार्केट के अंदर बकायदा आना भी शुरू हो गई, और हमने भी उसके बाद खरीद खरीद करके उसको कुछ इस्तेमाल भी किया। तो ये चीज वहां से शुरू हुई थी, ये वाकया पेश आया था, बल्कि ये बयान भी जो है ना वो अमेरिका में किया था, कैलिफोर्निया में एक दफा, और इस वक्त ये नहीं अलहमदुल्ला अल्लाह की तौफीक से इसको फिर वेबसाइट पे बढ़ा रहा था। तो बहरहाल खजूर की गुठलियां ये कैसे पीस लेती थी हमें तो ये बात समझ में नहीं आती। तो ये सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना जो उम्मत की बेहतरीन औरतें थी, ये घर के अपने सारे काम अपने हाथों से करती थी, और ये उनके लिए इबादत लिखा जाता था, ठीक है। तो जो भी काम एक ईमान वाला अल्लाह की रजा के लिए करता है और अल्लाह के बताए हुए दीन की खिलाफ वर्जी उसमें शामिल नहीं होती, तो वो काम जो है वो उसके लिए इबादत बन जाता है, ठीक है, वो काम उसके लिए इबादत बन जाता है। इसी वजह से ये बात हमने भी अल्लाह की तौफीक से कई बार समझाई कि लफ्ज इबादत जो है ना, ठीक है, लफ्ज इबादत जिसके लिए अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंस को पैदा किया, इंसानों और जिन्नों को पैदा किया है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसानों और जिन्नों को सिवाय इसके कि वो इबादत करें। तो अब ये इबादत करने का मतलब जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ना या हज करना या जकात देना या रोजा कर रखना, तो फिर अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ नमाज रोजा हज जकात इसके लिए पैदा किया, तो भाई बाकी जो इतना सारा वक्त होता है 24 घंटे के अंदर, तो उस वक्त के हम वो काम करते हैं जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि रोजा तो आप साल में 30 दिन का रोजा वही इबादत कहलाता है ना, ठीक है, और वो भी कितना है, सुबह सेहरी से लेकर के मगरब के वक्त तक, बस उसके बाद तो आप रोजा नहीं रख सकते। तो रात के वक्त अब आप क्या करते हैं, अब आप नमाजें पढ़ते रहे सारी रात, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ऐसा करते थे ना सहाबा किराम ऐसा करते थे, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर इबादत का मतलब क्या है, तो इबादत का मतलब जो है वो है हर किसी के हुकूक अदा कर, जो भी इंसान पर वाजिब होते हैं वो हुकूक अदा करना ये इबादत है, ठीक है। जिस जिस चीज के भी हुकूक हमारे ऊपर आते हैं और जिस जिस वक्त में आते हैं और जितनी जितनी मिकदार में आते हैं उनको अदा करना ये इबादत है, ठीक है। तो अब अल्लाह का हक जो है वो तो वैसे तो ऑल इनकम्पसिंग सारी चीजें जो है वो अल्लाह के हक के अंदर आ ही जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे नमाज पढ़ना अल्लाह का एक हक है, तो अब जुहर का जब वक्त होता है तो अल्लाह का हक हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है, तो उसको जुहर के वक्त में जुहर की नमाज को अदा कर देना ये इबादत कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फजर के वक्त में जुहर की नमाज अदा करने की कोशिश करें तो ये बात नहीं कहलाएगा, ठीक है। या अल्लाह ताला ने हमें नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से बताया कि जुहर की जो इबादत है वो 4 रिकत फर्ज होती है, 4 रिकत फर्ज होती है, आप जो है वो उसको 5 रिकत अदा करें, 5 रिकत फर्ज अदा करें तो ये इबादत नहीं होगी, ठीक है। हालांकि जोहर के वक्त में आप बिल्कुल जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन 4 की जगह 5 रिकत पढ़ रही, तो क्या ये इबादत हो गई, नहीं इबादत, ठीक है, क्योंकि जैसा बताया गया था वैसे आपने इसको अदा नहीं किया, ठीक है। तो इबादत की क्या तारीफ हुई, जिस वक्त जो हक जितनी मिकदार में और जिस तरह से वाजिब होता है वो हक अदा कर देना ये इबादत है, ठीक है। साल के अंदर एक दफा 25% निकालना अपने माल में से, जिस जिस माल को नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि इस के अंदर से जो है वो ज़कात निकालनी है, तो वो साल में एक दफा निकालना ये बात कहलाएगी। आप कहें कि नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं साल में दो दफा ज़कात निकालूंगी, एक दफा 2.5% निकालूंगी और दूसरी दफा फिर से 2.5% ज़कात निकालूंगी, ये दूसरी दफा जो आप ज़कात निकाल रही हैं ये इबादत नहीं। हाँ, नफली सदके की नीयत से निकाल रही हैं तो फिर वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप ज़कात कह करके साल में दूसरी दफा 2.5% निकाल रही हैं तो ये ज़कात, ये इबादत नहीं, क्योंकि ये ज़कात वाली इबादत जो है वो साल में सिर्फ एक दफा, पूरा साल गुजरने के बाद एक दफा ये वाजिब होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो दूसरी दफा ज़कात निकालेंगे तो ये इबादत नहीं होगी, बल्कि क्या बन जाएगी, ये बिदअत बन जाएगी, जो कि गुनाह होती है, जो कि गुनाह होता है, बिदअत बिदअत गुनाह होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर जैसे घर की जिम्मेदारी वाजिब करी, तो घर की जो जो खिदमत करनी है, ठीक है, तो अब वो जिस वक्त जिस खिदमत की जरूरत है घर में, तो जब वो उस खिदमत को करेगी तो वो घर का हक अदा करना है, वो घर का हक अदा करना है, ठीक है, तो वो इबादत है, 100% वो इबादत है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भाई देखिए, हर हर इबादत यानी हर हक, हर इबादत यानी हर हक एक मुख्तलिफ नौयत का है ना, एक मुख्तलिफ शक्ल का है ना, जैसे रोजा, ठीक है, तो रोजा वाला जो हक है तो वो उसकी क्या तारीफ है, भूखा रहना और प्यासा रहना, ठीक है, एक सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक भूखा और प्यासा रहना ये रोजा कहलाता है। अब कोई कहे कि नहीं, रोजा रखना जो है ना वो तो 4 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, ऐसे है, सर यानी हाथ उठाएंगे, हाथ बांधेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, तो ये इबादत है। नहीं भाई, नमाज की इबादत की अलग शक्ल है, नमाज की इबादत का अलग वक्त है और रोजे की इबादत का अलग वक्त है और अलग शक्ल है उसकी, तो हर इबादत जो होती है वो अलग तफसील के साथ, अलग तफसील के साथ है ना उसकी। उसी तरह से घर में जो इबादत है यानी घर के हुकूक अदा करना, उसकी अलग तफसील है भाई, उसकी अलग तफसील है ना। अब आप घर में हज करना शुरू कर दें कि भाई मैं घर का हक अदा कर रही हूं, घर में हज करती हूं, तो क्या घर का हक अदा हो जाएगा घर में हज करने से? नहीं, राइट। घर में आप छोटा सा नौजबिल्ला काबतुल्ला का मॉडल बना लें और उसके गिर्द जो है वो तवाफ कर लें और सही और सफा मरवा का मॉडल बना लें, उनके दरमियान आप दौड़ना शुरू कर दें, तो क्या आपका घर का हक अदा हो जाएगा? नहीं, घर के हक की अलग तफसीलात है, ठीक है। तो भाई जिस तरह हज करने से पहले हज का तरीका सीखना पड़ता है कि नहीं सीखना पड़ता, रोजा रखने से पहले रोजे के फराइज सीखने पड़ते हैं कि नहीं सीखने पड़ते हैं? उसके बगैर ही रोजा रखना शुरू कर देते हैं। हाँ, हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही करते हैं, बगैर सीखे जो है वो सारा काम करते हैं, अब तक हज करने भी बगैर सीखे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह कोई काम भी बगैर सीखे नहीं हो सकता, ना नमाज बगैर सीखे हो सकती है, ना रोजा, ना जकात, ना हज, ठीक है, तो उसी तरीके से घर का जो हक अदा करना है वो सीखे बगैर कैसे हो जाए? बगैर सीखे बस जो है ना वो आप घर में पहुंच जाएं और आपके ऊपर जो है वो घर डाल दिया जाए, अब जो है वो चलो भाई करो किसी तरीके से घर का काम, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि अच्छा हज करने जाना है, चलो भाई मक्का मुकरमा पहुंचा दिया, जहाज में सवार किया, मक्का मुकरमा पहुंचा दिया, बसों में उठा करके जद्दा से, अब करो जो करना है, वहां पे जाके सीखो, या रुलते रुलते कभी किसी को देखो वो ऐसे कर रहा है, फिर इसको देखो वो ऐसे कर रही है, तो फिर मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, फिर मैं भी उस तरह कर लेती हूँ, और तो ऐसे आपका हज उमरा हो जाएगा इस तरीके से, राइट। कितनी मुश्किल होगी, कितना बल्कि आपको आपके ऊपर जो है वो पेनल्टीज आएंगी, जिनायात जिनको कहते हैं ना, पेनल्टीज आएंगी यानी सजाएं मिलेंगी आपको, ये काम गलत कर दिया, वो काम गलत कर दिया, ये काम गलत कर दिया, ये काम ऐसे करना था वैसे कर दिया, लोगों को देखी देखी जो है वो कर दिया, तो फिर वो उल्टा उल्टा काम हो गया, राइट। इमेजिन करें ना, आप में से हज में कितनी लोग गई होंगी, बगैर सीखे समझे जाए वो उधर पहुंच जाए तो फिर क्या होगा, जनायात आएंगी ना, पेनल्टीज आएंगी ना, सजाएं मिलेंगी ना, तकलीफ होगी ना, अजियत होगी ना। तो घर में जो लैंड करवा दिया जाता है किसी बच्ची को, है नहीं, शादी हो गई और शादी के ऊपर जो है वो खर्चा कर रहे हैं और मेहंदी भी हो रही है और उबटन भी हो रहा है और मायू भी हो रहा है और जो है वो कपड़े भी बन रहे हैं और जो है वो पार्लर भी जाया जा रहा है और जो है वो जहेज का भी इंतजाम हो रहा है और पता नहीं मस्जिद में निकाह का इंतजाम ऐसे होगा और या हॉल में ये होगा और वो होगा ये होगा वगैरह सब कुछ हो रहा है। और फिर बेटी साहिबा को पहुंचा दिया आपने ससुराल में या जो है वो अपने शौहर के घर में, कर लो जो कर, अब जाओ गो फिगर इट आउट, राइट, गो फिगर इट आउट कि अब क्या करना है तुम्हें जाकर के। अब वो जो है वो कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी किसी को देखा, कभी किसी से पूछा, कभी कुछ किया, अपने तौर पे कर लिया, तो क्या होगा फिर, जिनायात नहीं आएंगी फिर उसके ऊपर। जिनायात का मतलब होता है पेनल्टीज, सजाएं। अब उसके ऊपर सजाएं नहीं आएंगी क्या, पेनल्टीज नहीं आएंगी क्या? वो कहे नहीं, मैं तो स्कूल गई थी, मैंने तो साइंस पढ़ा है, मैंने तो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, आई नो हाउ टू रन ए कंप्यूटर, राइट, आई नो हाउ टू डिजाइन ए डॉक्यूमेंट, आई नो हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट, और मुझे जो है वो और भी फिजिक्स के बारे में भी पता है और मैंने केमिस्ट्री में भी जो है वो ए प्लस लेकर के आया था और मैथमेटिक्स मेरी इतनी जबरदस्त है। तो वो कहेंगे भाई ये सारी चीजें जो है ना वो आप, अगर इतने ही सब कुछ अच्छा है तो आप जाएं किसी दफ्तर में जाके जॉब करें, राइट, यहाँ पे आप जो आई है ना घर में जो आई है यहाँ पे तो घर से मुतालिक आपको चीजें सीखनी थी ना, घर के मुतालिक चीजें सीखनी थी ना, घर वालों के साथ आपको कैसे रहना वो आपने सीखना था ना, ठीक है, वो तो आप सीख के आई नहीं, वो तो आपके मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले और आपसे जो है वो इंतहाई खैर ख्वाह जो आपके अम्मी अब्बू थे, मम्मा डैडी थे, उन्होंने आपको ये चीज तो सिखाई नहीं, ना आपने खुद सीखने की कोई कोशिश करी, तो फिर अब क्या होगा, अब हमारे कराची के लैंग्वेज में कहते हैं चपेड़े पड़ेंगी फिर उसके बाद, क्या पड़ेंगी, चपेड़े, और दीन के बाद उसमें कहते हैं जनायात लगेंगी, ठीक है, जनायात लगेंगी, पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। तो ये जो सहाबियात के वाकयात हमने पढ़ लिए हैं ना, ये पढ़ने से मसला हल नहीं होता, ठीक है, ये सहाबियात के वाकयात पढ़ने से मसला हल नहीं होता, क्योंकि सहाबा के बारे में एक हदीस है, बड़ी जबरदस्त हदीस है, ठीक है, उन्होंने इतनी लंबी कहानी लिख दी है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, तरह पढ़ लेते हैं। कराची में लालू खेत मार्केट में खजूर की गुठलियां दे दें तो वो कुछ दिन बाद पीस कर दे देते हैं, जब ये पता नहीं था तो हम लोगों ने किसी मरीज के लिए गुठलियों को तवे पर हल्का हल्का गर्म कर दाब के दर्जात बुलंद फरमाए। गुठलियों की आपने कितनी सरपाई करी है। अच्छा, तो घर में मोटा मोटा पीस, बस ठीक है, बाकी लोग भी देख सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अगर दिल चाहे तो इस फकीर की बात भी सुन लीजिएगा। तो बहरहाल, तो क्या बात हो रही थी, खजूर की गुठलियों में वो भी दस गई। क्या बात हो रही थी भाई, तो आप ही बताएं ना। हाँ, सहाबा के बारे में हदीस, ज्यादा आपने बता, ठीक है, सहाबा के बारे में एक हदीस है और बड़ी जबरदस्त हदीस है, ठीक है। अब उसके ऊपर मुहद्दिसीन ने कुछ कलाम भी किया है कि इसकी जो है ना वो सनद इतनी वो नहीं है, कवी नहीं है और वगैरह वगैरह, लेकिन जो हमारे उलमा ने फिर उसके ओवरऑल सब असनाद को देख करके हुक्म फरमाया ना, मैं कहा कि जी बेशक इसकी सनद जो है ना वो थोड़ी सी यानी जयीफ लिखी है, लेकिन इतने वास्तों से ये हदीस पहुंची है, इतने तुरुक से ये हदीस जो है वो नकल होती है कि जिसकी वजह से ना ये बयान की जा सकती है, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरमाया, वरना तो जो इसका मौजू है वो तो वैसे ही मानन तो ये ठीक है ही, लेकिन लफ्जन कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे फरमाया कि नहीं फरमाया, तो ये बात जो है ना वो इतने तुरुक से हम तक पहुंचती है कि ये ऐसे बयान की जा सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है ना, मौजूद तो इसका वैसे ही कंफर्म है, लेकिन अल्फाज के बारे में खाली बात हुई थी। ठीक है, तो क्या हदीस है? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा नुजूम की मानिंद है, सितारों की मानिंद। ठीक है, बिअय्यिहिम इक्तदैतुम, तुम उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे ना, तुम हिदायत पाने वाले। ठीक है, जो हैंड रेज कर रही थी वो बस लिखते हैं ना यहाँ पर, जो भी आपको कहना है। ठीक है, तो फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के माने में, तुम उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे ना, तुम हिदायत पा जाओगे। ठीक है, तो सितारों को लोग हिदायत के लिए देखते थे, रास्ता तलाश करने के लिए। बाकायदा ये जिस तरह से तफसीर की क्लास में बात हो रही थी ना, फ्यूचर के अहवाल मालूम करने के लिए नुजूम के जरिए से लोग मालूम किया करते हैं, नुजूमी लोग। लेकिन ये तो एक बाकायदा ऑथेंटिक एंड वैलिड इल्म है कि रास्ता तलाश करना। ठीक है, कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, या ये कि मैं फलाने शहर की तरफ जा रहा हूं तो वो मुझे सितारों से कैसे उसका रास्ता मिलेगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, सितारों के जरिए से रास्ता तलाश करना। ठीक है, तो अब जिस भी सितारे को, मेरे मेरे सारे सहाबी सितारे के माने लें, ये बात तो उम्मीद है कि कोई बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सहाबा की जिंदगियों में हमारे लिए हदायात है। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर एक बहुत बहुत जबरदस्त नुकता, हमारे एक भाई ने पिछले दिनों अल्लाह ताला ने उनके दिल में अजीब बात डाली और बहुत बेहतरीन बात उन्होंने फरमाई। हम कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे इसी किस्म की, तो फरमाया उन्होंने कि ये जो बात नबी अलैहिस्सलाम फरमाई ना कि सहाबा सितारों की मानिंद है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सितारे कहाँ होते हैं? सितारे कहाँ होते हैं? जमीन पे नहीं होते सितारे, किसी बिल्डिंग पर नहीं लगे हुए होते, राइट? सितारे किसी पहाड़ के ऊपर नहीं होते कि पहाड़ जो है ना, थोड़ा ऊंचा सा पहाड़ है तो उसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं। सितारे किधर होते हैं? सितारे तो आसमान पर होते हैं। ठीक है, तो सितारे आसमान पर हैं और बाकी जो उनसे हिदायत लेते हैं वो किधर होते हैं? वो जमीन पर होते हैं, चाहे वो जमीन में कहीं पर भी हो, किसी बिल्डिंग पे खड़े हुए हो, किसी पहाड़ पे खड़े हुए हो, लेकिन है तो जमीन पर ना, राइट? तो अब जमीन वालों में और आसमान वालों में कितना डिस्टेंस होता है, कितनी ही ऊंची जगह पे आप पहुंच जाएं, बुर्ज खलीफा के आप जो है वो टॉप के ऊपर जाके खड़े हो जाएं, लेकिन आसमान से तो आप फिर भी बहुत ज्यादा दूर है ना। ठीक है, तो आसमान वालों को तो आपने देखना है, लेकिन जमीन वालों को अब क्या करना है, ये आप बता रहे हैं। क्या सितारों को देख करके आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे? क्या करना पड़ेगा जी? सितारों से आपको हिदायत मिल जाएगी, लेकिन क्या आप कुछ किए बगैर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे कि भाई सितारों को मैंने देख लिया था, सितारों को बारे में मैंने पढ़ लिया था? ठीक है, जमीन वालों से सीखना पड़ेगा, उसूल लेने होंगे जिंदगी के, यू हैव टू फॉलो इट, कोशिश आपको खुद करनी हो। ठीक है, जमीन वालों से रास्ता पूछना पड़ेगा, कंफर्म करना हो भाई जमीन वाले जो भी हैं तो वो भी तो कहां से हिदायत दे रहे हैं, वो भी तो आसमान वालों से ही हिदायत दे रहे हैं ना, यानी सितारों से हिदायत दे रहे हैं। ठीक है, आपके मशायख हैं, आपके मुफ्ती साहब हैं, आपके मौलवी साहब हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं, तो भाई मौलवी साहब किधर से हिदायत दे रहे हैं? मौलवी साहब भी तो आसमान के सितारों से हिदायत दे रहे हैं ना, यानी सहाबा कराम से। तो अब करना क्या होगा कि जो तफसीलात है ना, तफसीलात कि जी मुझे उस मंजिल तक, जो कि मुझे सितारे से पता तो चल गई है कि मंजिल क्या है मेरी, डेस्टिनेशन क्या है मेरी, रुख क्या है मेरा जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, रुख क्या है, ये तो आपको सितारों से मिल गया। लेकिन अब यहां से वहां पहुंचने के लिए कदम तो आपके अपने होंगे ना, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो कदम तो आपके अपने होंगे, राइट? अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो गाड़ी तो आपकी अपनी होगी ना, उस गाड़ी वो स्टार्ट तो आपने खुद ही करना होगा, उस गाड़ी में पेट्रोल तो आपने खुद ही डालना होगा, राइट? उस गाड़ी को ड्राइव तो आपको खुद ही करना होगा ना, आप सितारे साहब आकर के तो आपकी गाड़ी नहीं चलाएंगे ना, राइट? सितारे साहब आकर के जो है वो आपकी गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं डालेंगे ना, ठीक है? तो क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके अहवाल के हिसाब से जो डिटेल्स हैं वो जमीन वालों को खुद फिगर आउट करनी होगी। जमीन वालों को वो डिटेल्स खुद फिगर आउट करनी होंगी, ये सितारों से पता नहीं चलेगी। सितारों से एक तो हमें हाई हाई लेवल की चीजें पता चले, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि अगर हम सहाबा की बात कर रहे हैं तो सहाबा के वाकयात से हमें क्या पता चला है, 1400 साल पुरानी बातें पता चली हैं, 1400 साल पुरानी। तो उस वक्त सहाबा जिस तरह के घर में रहते थे, क्या आज आप भी उसी घर में रहती हैं, राइट? उस तरह की जो है वो सहाबा का जो पानी का निजाम था, कि आपके घर में भी पानी का निजाम वैसे ही है क्या? उस जमाने में जो बाथरूम जाने का निजाम था सहाबा का, क्या आपके घर में भी बाथरूम जाने का निजाम वैसे ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरीके से उस जमाने में जिस तरीके से काश्तकारी हुआ करती थी, सहाबा काश्तकारी किया करते, तो आज भी क्या उसी तरीके से काश्तकारी की जाती है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है? तो अब ये सारी तफसीलात जो है वो हर दौर हर जमाने के लोगों को खुद फिगर आउट करनी है, खुद डिफाइन करनी है, जो कि उसूलन उन्हीं से रहनुमाई हासिल करनी, लेकिन उसूलन, तफसीलन नहीं, उसूलन, ठीक है? तफसील तो भाई खुद से देखनी पड़ेगी ना कि मेरे जमाने के हिसाब से क्या तफसील है। जिस तरीके से क्या लिखा है उन्होंने, उनके पास इल्म है, तफसील है, जैसे इल्म नुजूम का इल्म जैसे आता है वैसे आता है वैसे रास्ते पे, क्या कह, तो मिसाल के तौर पर कि जैसे उस जमाने की खेती बाड़ी का इल्म, ठीक है ना? उस जमाने में भी खेत होते थे ना, उस जमाने में भी बागात होते थे ना, ठीक है? तो उस जमाने में बागात को मैनेज करना और मेंटेन करना, तो उसमें तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? 1400 साल में तरक्की हुई है ना। तो अब जो बागात की मेंटेनेंस होती है या खेती बाड़ी होती है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी तफसीलात ऐड हो गई है, ठीक है ना? बहुत सारी उसके अंदर जो है वो डिटेल्स है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं, और अवामुन्नास जो हैं वो एक्सपर्ट्स की मेहनत को फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? ये तो नहीं कहते कि सहाबा ने ऐसे किया था तो अब जो है वो हम भी खेती बाड़ी ऐसे ही करेंगे, या सहाबा के जमाने में जो है ना वो जंग इस तरह से लड़ी जाती थी तो हम भी जो है वो इसी तरीके से जंग लड़ेंगे जिस तरह सहाबा ने लड़ी थी, राइट? उसी तरह घोड़े पे हम भी बैठेंगे और उसी तरह से जो है वो हम भी जो है वो खंदक कभी खोद लेंगे, और इसी तरीके से कभी जो है मंजनीक से जो है वो पत्थर फेंक दिया करेंगे, क्योंकि सहाबा ने ऐसे किया था, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जंगी उलूम के अंदर कितनी तरक्की करी है, राइट? उसी तरह तिब के अंदर, सहाबा के जमाने में तिब जो मौजूद थी, मेडिकल साइंस, तो अब जो है वो मेडिकल साइंस उसी तरीके से नहीं, इतनी सारी उसके अंदर तफसीलात बिल्डअप हुई है ना, ठीक है? तो भाई इसी तरीके से जो आपके घर का निजाम है, जो आपके औलाद की तरबियत का निजाम है, तो उसके लिए भी तो तफसीलात की जरूरत है ना, उसके लिए भी तो तफसीलात की जरूरत है ना, कि भाई सहाबा के से जो हमने उसूल हासिल किए हैं कि घर का काम खुद करना है, खिदमत के ऊपर जो है वो अपना फोकस रखना है, और ईमानी जिंदगी खुद भी गुजारनी है और अपनी औलाद को भी ईमान के ऊपर जो है वो हमने परवान चढ़ाना है, तो इसकी तफसीलात किधर से आई, इसकी तफसीलात कैसे आई? क्या जो है वो आज से 1400 साल पहले वाले सहाबा के वाकयात से हमें तफसील भी मिल जाएगी? तफसील मिल जाएगी, उसूल तो मिल जाएंगे, क्या तफसील भी मिलेगी? क्या हमें आज से 1200 साल पहले पुरानी जो फितर डेवलप हुई हुई है, या 1000 साल पहले जो फितर डेवलप हुई हुई है, उससे आज की सारी तफसीलात मिल जाएंगी? नहीं। तो आज भी तो इश्तिहाद हो रहा है ना फिका के अंदर, जो मुफ्ती हजरात करते हैं, जो उलमाए कराम करते हैं, भाई इसी तरीके से जो घर के मामलात हैं तो इनकी तफसीलात किधर है, सिवाय इस उमूर खानदारी में हुस्न इंतजाम या किसी जो है वो शेख की जो है वो इस किस्म के कोई बयान वगैरह रिफॉर्म में हो, लेकिन कोई करिकुलम तो नहीं है ना इसका? बाकी तो सारी चीजों का करिकुलम मौजूद है, फिका का भी करिकुलम मौजूद है, तफसीर का भी करिकुलम मौजूद है, हदीस का भी करिकुलम मौजूद है, लेकिन हाउ टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट, बाकी चीजों में तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स मौजूद होती हैं, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स क्यों नहीं होती? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स यानी एग्जैक्टली करना क्या है, ये कौन करेगा ये काम? ठीक है, इस काम किए बगैर बात नहीं बनेगी। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कि इतने आली हिम्मत होते हैं और इतने जहीन भी होते हैं और फोकस्ड भी होते हैं जो कि अपने जाती एतबार से खुद से तफसीलात बना सकते हैं, ठीक है ना, उसूलों को देख करके खुद से तफसीलात, ये बहुत थोड़े लोग कर सकते हैं। अवामुन्नास ऐसा नहीं कर सकती, आम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आम लोगों को तो उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे जब आप बच्चे को जो है वो स्कूल में दाखिल करती हैं ना, तो बच्चे को वहां पे जाकर के उसूल नहीं बताए जा रहे होते खाली, यहाँ पे ये उसूल बता दिए हाई लेवल, अब जो है ना बच्चा खुद ही फिगर आउट करे कि अब जो है वो फिजिक्स की डिटेल्स क्या हैं और साइंस की डिटेल्स क्या हैं और केमिस्ट्री की डिटेल्स क्या हैं और बायोलॉजी की डिटेल्स क्या हैं, और नहीं, सारी तफसील बताई जा रही है, सारी तफसील पढ़ाई जा रही है ना, ठीक है ना। ये तो नहीं कि आप जो साइंस के उसूल बता देते हैं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर, बस अब खुद ही करो जो करना है तुमने जाकर के। तो जो मुआशरे की इकाई है, जो यूनिट है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, जिसको कि घर कहा जाता है, इसके लिए जो है वो सिर्फ सेमिनार्स के जरिए से काम चल रहा है। इधर जो है वो किसी शेख ने बयान कर दिया उमूर खानादारी के ऊपर, किसी जो है वो किसी ने कोई और थोड़ी सी बात कर दी, किसी ने कोई और थोड़ी सी बात कर दी, राइट, और बस जो है वो सारे लोग इतने आली हिम्मत हो जाए, सारी खवातीन हो, वो भी खवातीन, खवातीन जो है वो इतनी आली हिम्मत हो जाए कि सब जो है ना वो खुद से फिगर आउट करें कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, उमूर खानदारी हो या जो है वो औलाद की तरबियत हो या ससुराल के साथ मामला हो या माँ बाप के साथ मामला हो या बीवी शोहर के मामला हो या बहन भाई के मामला हो, बस जी खुद ही करें, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे भी अगर कुछ तो बस बयान कर देंगे आप, बाकी हम हमने आपको जो है ना वो आलमा कोर्स ही पढ़ाना है, बस बस आलमा कोर्स, राइट, ताकि आलमा कोर्स पढ़े और फिर खुद से फिगर आउट करें, सब के सब खुद फिगर आउट करें कि अब मैंने करना क्या है, फलानी हदीस पढ़ी थी, फलानी जो है वो कुरान की आयत पढ़ी थी, अब मैं अपनी जिंदगी में उसको खुद से इम्प्लीमेंट करूँ, तफसील मुझे कोई नहीं बताएगा, तो ऐसे तो नहीं चलता ना फिर काम, ऐसे काम जैसा कि हमारा कोई काम नहीं चल रहा, पति चाहती है कि हमारा कोई काम चल ही नहीं रहा है ना, तो इस एरिया के ऊपर मेहनत करने की जरूरत, इस एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ये इतना मुश्किल काम लग रहा है इस वक्त, इतना मुश्किल काम लग रहा है इस वक्त कि बजाहिर देखने में बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन जब करने पर आता है ना कोई, पता चलता है कि यह सबसे मुश्किल काम है, और क्या वजह है इसकी सबसे मुश्किल होने की, सही बात यह है कि अल्लाह, ठीक है, कि ये क्या है, मसला क्या है इसके अंदर, क्या ये मसला तो नहीं है हमारे तो दिन में अपनी काम चोरी की वजह से है, कि इसके ना करने के ऊपर समझने के जितने शयातीन है ना, शयातीन वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि ये काम कहीं कहीं ना हो जाए, ये काम कहीं हो ना जाए। शयातीन जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर फेमिनिज्म के फरोख के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं ना, पूरी दुनिया में, चाहे वो दीन की ही लाइन से क्यों ना कोशिश कर लूं, लेकिन किसी तरीके से औरतें घर से बाहर निकलें, किसी तरीके से बच्चों को जो है वो हुकूमत के निजाम के सुपुर्द करें या मेड्स के सुपुर्द करें या जो है वो अल्लाह के दुश्मनों के सपोर्ट करें और बस औरत बाहर निकले और जॉब करे और कमाए और अपना करियर बनाए और बस, पूरी दुनिया इस वक्त इसी मेहनत में लगी हुई और उसको दीनी शक्ल भी देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा दीन भी यही कहता है कि औरत बाहर निकले, तो उसी तरह से इसका जो दूसरा साइड है ना वो भी तो फिर इसका लाजिम मलजूम हो जाता है ना कि कहीं घर वाली जो मेहनत है ना, ये औरत के सामने अच्छी बन के ना पेश हो जाए। घर वाली मेहनत, घर को संभालने की मेहनत, घर को बचाने की मेहनत, और घर को जो है वो, यानी जहां से कि इन लोगों की अच्छी नस्लें बन करके निकले, कहीं ये चीज जो है वो दुनिया के अंदर स्टैब्लिश ना हो, क्योंकि इसमें शैतान को अपनी मौत नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? शैतान को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, मौत नजर आ रही है, और इस वजह से वो सबसे ज्यादा मेहनत इस बात के ऊपर है। जिस तरह उस तरफ मेहनत, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी कि जिस तरह घर से बाहर निकालने के ऊपर मेहनत भरपूर अंदाज से हो रही है, उसी तरीके से इस पर भी मेहनत लाजमन इसके ऊपर। कैसे ये कैसे हो सकता है कि वो मेहनत तो कर रहा हो घर से बाहर निकालने की, लेकिन ये मेहनत ना कर रहा हो? तो भाई घर में ऐसे हालात पैदा होंगे कि जिसके नतीजे में औरत बाहर निकले, तभी तो औरत बाहर निकलेगी ना। घर में कुछ करने के लिए नहीं है, घर में फारिग बैठी हुई है, या घर के अंदर जो है वो बोझ बनी हुई है दूसरों के ऊपर, राइट? कोई पॉजिटिव इनपुट घर के अंदर नहीं देने वाली है, तो अब क्या होगा? बाहर निकलो, घर में क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हो जाओ, उल्टी सीधी जो है वो। अभी एक दोस्त ने हमारे लिखा भी हमें कि जो कॉलेज जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो वो तो फिर जो है वो काम में लगी रहती हैं, और जो घर पे बैठी होती है ना, वो तो बस बैक बाइटिंग, स्लैंडरिंग, राइट, और गॉसिपिंग, और फैमिली पॉलिटिक्स, राइट, या जो है वो डिवाइसेस के ऊपर लगी हुई है। कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा हुआ है, कोई कोई पता नहीं है इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, तो कोई जो है वो ऐसे ही फोन पे लगा हुआ है। अपनी अम्मा से दो दो घंटे, तीन तीन घंटे अम्मा से रोजाना बात होती है, किसी की जो है वो अपनी बहनों से जो है वो घंटों घंटों बात होती है, किसी कुछ से बात। ये क्या इनपुट है? तो घर में तो बेसिकली शी इज नॉट ए पॉजिटिव वैल्यू एड इन द हाउस। घर के अंदर तो वो कोई काम नहीं कर रही है ना। तो अब कितना आसान हो जाता है शैतान के लिए उसको बाहर निकालना, कि घर में तुम कर क्या रही हो, जिसको कहते हैं ना बच्चे पाल रही हो, तो वाकई बच्चे तुम क्या कर रही हो बच्चे पालने में? जो तुम कर रही हो ये काम तो कोई गधे का बच्चा भी कर सकता है, राइट? कोई गधा भी ये काम कर सकता है जो तुम कर रही हो घर में बैठ करके। तो बाहर निकलो, कमाओ जा करके, राइट, कंट्रीब्यूट करो घर के अंदर। सारी मर्द क्यों कमा रहा है? तुम भी कमाओ जा करके, और जाहिर है कमाने के लिए जो है वो एजुकेशन भी हासिल करनी पड़ेगी, कमाने वाली एजुकेशन। क्यों? क्योंकि घर में तो तुम्हारा कोई फायदा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रही हो। क्यों काम नहीं कर रही भाई घर के अंदर? क्यों घर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही? क्योंकि पता ही कुछ नहीं है कि क्या करना है, पता ही कुछ नहीं है क्या करना है। दुनियादार जो है उसको वैसे ही कुछ पता नहीं। अभी जैसे कि हमने पीछे बात करी, लाइंग एंड स्लैंडरिंग एंड बैक बाइटिंग एंड फैमिली पॉलिटिक्स एंड सोशल मीडिया, इस तरह वक्त गुजार रही है। और जो बहुत दीनदार बन गई वो क्या कर रही है? कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस, राइट। कुरान हदीस का मतलब क्या? कि बस जो है ना वो उसूल पढ़ दो, उसूल पढ़ दो, उसूल पढ़ दो, करना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। अब क्या होता है, कुरान हदीस पढ़ के सनद मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है, दिमाग जो है वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाता है, तकब्बुर आ जाता है, अब किसी की बात समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि खुद कुरान हदीस कितना पढ़ लिया, अब जाकर के अपने आप को आलमा समझना शुरू हो गई है, मुफ्तिया समझना शुरू हो गई है, अब बात ही समझ में नहीं आ रही है अपने बंदे की। तो या तो दुनिया के अंदर गो टू हेल वाला मामला, या जो है वो दीन के अंदर बस आसमानों वाली बातें, सितारों वाली बातें, राइट। तो ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरती है ना, ऐसे तो इस्लाह नहीं होती ना, ऐसे तो मुआशरा सुधरता नहीं है ना, ठीक है। लेकिन इस तरफ हमें तवज्जो करनी होगी। हमारे अकाबरीन ने जो ये काम किया ना, वो इंतहाई मजबूरी में किया, उन्होंने जो किया सही किया, लेकिन वो उस वक्त के हालात का तकाजा था कि जबकि मुसलमान उम्मत के अंदर जो है वो बिल्कुल सेक्युलरिज्म आ चुका था, सेक्युलरिज्म, और बिल्कुल इल्हाद नहीं बल्कि दहरियत आ चुकी थी मुसलमान उम्मत के अंदर। हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह की किताब हमने पिछले दिनों भी कोट करी थी, उन्होंने जो अपने दौर के हालात लिखे ना आज से 50-60 साल पहले के, उन्होंने यही लिखा है, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा तुम्हें खानदान में, जब उससे बात करो पता चलेगा कि वो तो दहरिया हो चुका है। तो वो दहरियत का दौर था, जिस दौर से निकालने के लिए हमारे अकाबरीन ने ये आलिमा कोर्स शुरू किया था और आलिम कोर्स शुरू किया था अवामुन नास के लिए, मदारिस की बात नहीं कर रहे, अवामुन नास में जो आलिम आलिमा कोर्स शुरू किया था ना, उस दहरियत के मिजाज से निकालने के लिए। लेकिन दिस वॉज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है, ये तो सिर्फ जो है ना वो एक समझने जिसको कहते हैं एपेटाइजर, एपेटाइजर समझते हैं ना, जो असल खाना आने से पहले जो एपेटाइजर होता है ना वो खाते हैं ताकि भूख जरा पैदा हो, जरा भूख पैदा हो, ठीक है, इश्तिहा अंगेज उसको उर्दू में भी शायद कह सकते हैं, इश्तिहा पैदा करने के लिए ज्यादा खाने की इश्तिहा, उसको एपेटाइजर कहते हैं। लेकिन एपेटाइजर इज नॉट द रियल मील, ये असल खाना तो नहीं होता ना, असल खाना तो बाद में का खाना होता है ना, कोई कहे कि जी एपेटाइजर एपेटाइजर खा लिया, अब मैंने जो है वो मेरा पेट भर गया है, मैंने खाना खाना ही नहीं है, मैंने कहा यार तुमने एपेटाइजर क्यों खाया, असल मसला तो खाना खाना था, असल मकसद तो, असल मकसद तो घर के अंदर दीन लेकर के आना, दीन के मुताबिक घर के सारे मामला चलाना और अपनी औलादों को जो है सही मानों में जो है वो सही मानों में दीनदार बनाना, जाहिरी तौर पर दाढ़ियां उगवा देना और टोपियां पहनवा देना दीन नहीं होता, पजामे पहना देना और टोपियां पहना देना यही दीन है हमारा, साली साली क्या ये तो नहीं है मकसद ना, मकसद तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो है हमारी असल मंजिल, ये दरमियान का जो रास्ता थी ना, ये तो एक मजबूरी है कि भाई आप जो है मिसाल के तौर पर अगर रियाज से जो है वो कराची की फ्लाइट लेना चाहते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट अगर आपको ज्यादा महंगी पड़ रही है, मुश्किल पड़ रही है, तो आप बहरीन के थ्रू फ्लाइट ले लेते हैं, बहरीन में एक आपका स्टॉप ओवर होगा, फिर उसके बाद आप कराची जाएंगे। लेकिन भाई बहरीन इज नॉट योर डेस्टिनेशन, इज नॉट योर डेस्टिनेशन, राइट। उसी तरीके से ये आम लोगों के लिए ये बड़े बड़े उलूम हासिल करना, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन, ये तो खाली जो है वो इस तरफ लाने का एक बहाना था कि भाई ये जो पढ़ने लिखने वक्त के चस्का लगा हुआ है ना, जिन लोगों को किताबों का चस्का लगा हुआ है, पहले जो है वो एमफिल करती थी, पीएचडी करती थी और मास्टर्स करती थी और बैचलर्स करती थी और डिग्रियों के इनको चस्के लगे हुए थे, अब इनको दीन की डिग्रियों के जरा चस्के लगाते हैं, क्या करते हैं दीन की डिग्रियों के चस्के लगाते हैं। लेकिन वो था सिर्फ चूंकि ये डिग्रियों के चस्के लगे हुए हैं पहले से, तो अब उसी लाइन से इधर लेकर के आना, लेकिन ये हमारा एंड गोल नहीं है, ये एंड गोल नहीं है, ठीक है। अब तो भाई असल काम करने के का वक्त आ चुका है, अब चस्के लग चुके हैं सबको जो है वो, माशाल्लाह सब एक से एक दीनदार बन चुके हैं, अब ये दीन जिंदगी में लेके कैसे आना है ये नहीं समझ में आ रहा किसी को, इसी वजह से शैतान के जो है वो वाले नहीं आ रहे हो, मैं जो मर्जी आए जो है वो दीन के नाम पे बेच रहा है इस वक्त, ठीक है ना। ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह। السلام عليكم.